मोहसिन इंसानियत, इसमें से हम मक्की दौर कर रहे हैं और आज मक्की दौर का आखिरी टॉपिक है हमारा हिजरत का इज़्ने आम, यानी आम तौर पर हिजरत की इजाज़त मिलती है। पीछे हमने हालात देखे थे, अब हम वाक़यात देखेंगे। पेज नंबर 217 का सेकंड पैराग्राफ है, आइए पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों हिजरत करनी पड़ी और क्या आज के हालात हमसे किसी हिजरत का तकाजा करते। पढ़ते हैं, आखिरी बैत उकबा यानी जिलहज 13 बाद बैसत, यानी नबी सल्लम के नबी बनने के 13 साल बाद एक बैत हुई थी जिसको बैत उकबा सानिया कहते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह ने मक्के के मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने अब तुम्हारे लिए भाई पैदा कर दिए हैं और एक ऐसा शहर फराहम कर दिया है जहाँ तुम अमन से रह सकते हो। इब्ने हिशाम का हवाला है ये इब्ने इसहाक के नाते से। ये हुक्म मिलते ही सबसे पहले इसको हाईलाइट करें, ये छोटी छोटी चीज़ें असाइनमेंट्स में आती हैं और अगर आप पढ़ते हुए इनको हाईलाइट कर रहे हो तो फिर इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले किसने इस हुक्म पर अमल किया? हज़रत आमिर बिन रबिया अल अंजी अपनी बीवी लैला बिनते अबी हसमा के साथ निकले, फिर हज़रत अम्मार बिन जासिर और बिलाल और हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने हिजरत की, फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान अपनी अहलिया रुकैया बिनते रसूलुल्लाह के साथ रवाना हुए। फिर तो महाजरत का एक सिलसिला चल पड़ा, यानी वहाँ हालात इतने ख़राब थे कि फिर उसके बाद कहना नहीं पड़ा बल्कि लोग खुद ब खुद एक के बाद दूसरा मक्का को छोड़ता गया। कितनी बदबख्ती थी उन लोगों की, ज़रा सोचिए, जिनकी वजह से इतने प्यारे हीरे मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। और कितनी खुशबख्ती थी मदीना वालों की कि मक्का के चुने हुए लोग उनके पास आ रहे हैं। यही होता है, बस्तियों के भी नसीब होते हैं जैसे इंसानों के नसीब हैं, जगहों के भी नसीब होते हैं। हत्ता के पूरे कुंबे अपने घर बार छोड़कर निकल खड़े हुए। इब्ने इसाक के हवाले से इब्ने हिशाम ने ख़ास तौर पर 3 ख़ानदानों का जिक्र किया जिनके सब अफराद हिजरत कर गए और इनके घर खाली पड़े के पड़े रह गए। ज़रा सा इस पर गौर करें, पहले कितना मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना और जबकि पीछे कोई उनको अब देखने वाला नहीं, पूरे ख़ानदान ही चले गए। क्या अल्लाह ताला ने उनकी हिजरतों को ज़ाया करना था? सबसे मुश्किल मुझे लगता है किसी के लिए हिजरत होती है ना, तो अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ना, अपने घर, अपने चलते कारोबार छोड़ना, अपनी जायदादों पर दूसरों को मालिक बनते देखना। लेकिन जब मिशन प्यारा होता है, जब हिदायत का सफ़र चलता है, तो फिर ये बातें बहुत छोटी लगती हैं और इन लोगों ने ऐसे ही किया। तो 3 ख़ानदान कौन से थे जिनके सभी चले गए? तो ज़ाहरी बात है पीछे से घर दूसरों ने ले लिए ना। एक था बनी मज़ून, दूसरा बनी अल बकीर और तीसरे हजश बिन बनी रियाब बिन अब्दुलबर। यानी ये तीसरे बनी हब्श थे, यहाँ तक के बनी हब्श बिन अबी बिन रियाब। यानी इब्ने अब्दुल बर ने लिखा है कि बनी हजश के साथ बनी सात बिन खुजैमा के भी औरत मर्द सब चले गए। इन दोनों ख़ानदानों के जुमला 30 अफराद ने हिजरत की, यानी टोटल कितने लोग थे 3 ख़ानदानों में? 30, जिनमें नबी सल्लम के फूफीजाद भाई अब्दुल्ला बिन हजश, हजश ये लफ्ज असल में ये लिखने में थोड़ा सा चेंज होता है, और अबू अहमद बिन हजश जिनका नाम अब था, और इनकी बहनें हज़रत ज़ैनब बिनते जहश जो बाद में उम्मुल मोमिनीन बनी, और हमना बिनते जहश जो हज़रत मुसअब बिन उमैर की बीवी, और उम्मे हबीब बिनते हजश हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बीवी शामिल थी। एक मरतबा अबू जहल और दूसरे एकाबर बिन जहश हजश के सुनसान घरों से गुजरे तो अबू जहल ने इस मंजर को देख कर ये रिमार्क पास किया। अब ये जुमला देखिए अबू जहल की सोच का मजहर है, क्या कहते हैं? ये हमारे ब्रादर जादे का किया धरा है, इसने हमारे इज्तमा को पारा पारा कर दिया, हमारी वाहदत का शेराजा बखेर दिया और हमें आपस में एक दूसरे से फाड़ दिया। किसको ये मिल रहा रिगार्ड? नबी सल्लम को। देखिए सोच है ना, खैर आती नहीं दिखती लोगों को, लोगों को दिखता है कि हमारा शर जो था वो अच्छा था जिसमें सारे मिले हुए तो थे, और इस शख्स ने आकर कुछ को दीन सिखा दिया और घरों में लड़ाइयाँ पड़ गईं। आज भी यही हाल है, लोग गलत काम पे मिलके इत्तफाक करना पसंद करते हैं इसकी निस्बत के कुछ लोग अच्छी बात करें और उनके मुकद्दर को बदल दें। तो लिहाजा ये होगा, याद रखिए, जब भी इनकलाब आएगा, जब भी रेवोल्यूशन आएगी, ये होगा। घरों में लड़ाइयाँ पड़ेंगी, खानदान टूटेंगे। वजह ये कि सब एक जैसे थे। इस पे मैंने एक मिसाल दी थी सबीलुल जन्ना में, कि जिसका खुलासा क्या है कि अगर किसी एक बस्ती में पानी आता है, सब पानी पीते हैं, खबर फैल जाए कि गटर की ये पानी की पाइपें पीने वाले पानी से मिल गई हैं। अब जाहरी बात है, जो साफ तबीयत के लोग हैं वो कभी नहीं पानी पियेंगे, वो कहेंगे बीमार हो जाएंगे। एक गिरोह उठता है, वो कहता है कि कोशिश करके पाइपों को खेड़ते हैं और पानी को अलग अलग कर लेते हैं। अब जब ये करते हैं तो इसके बाद जो लोग थे उनके तीन गिरोह बन जाते हैं। कुछ कहते हैं नहीं नहीं हम ये रिस्क नहीं ले सकते, चुप करो, किसी को ना बताओ, जरा सीमों वाला पानी पी रहे हैं, पीते रहो। दूसरे कहते हैं कि मुश्किल तो है लेकिन करना तो पड़ेगा। हाँ पर बड़े मजबूरियां हैं, मुश्किलात हैं, क्या करें, चलो सोचते हैं। तीसरा एक गिरोह था, वो उठ के वो पाइपों को खोदना शुरू कर देता है कि भाई हम गटर वाला पानी क्यों पिए। अब जब वो गटर वाले पाइप अलग किए जा रहे हैं तो पूरी बस्ती उखड़ गई, कुछ दिन पानी भी बंद होगा। अब जब इन्होंने ये किया तो वो लोग जो बड़े मसलियत पसंद थे शुरू वाले, कि नहीं चुप करके सब बैठे रहे, वो कहते हैं देखो इन्होंने हमारे शहर का हाल खराब कर दिया। उन्हें कहेंगे देखो अल्लाह के बंदो, कल फायदा तुम्हें ही तो होगा, तुम्हारी नस्लें साफ पानी पियेंगी, खराब नहीं होगा। तो यही मिसाल है उन लोगों की जो फितनों के इस दौर में लोगों को कुरान सुन्नत का पानी देना चाहते हैं, बेहयाई और खराबियों के फितनों से बचाना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम इसमें आगे एक टॉपिक करेंगे कि दौरे हाजिर के फितने और इनका हल। सीरत की रोशनी में सब दोस्तों को बुलाएं अपने जो आज के फितनों का शिकार हैं और हल नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह हम सीरत के साथ उसको जोड़ कर देखेंगे कि इसका क्या हल है। तो वो वहदत बुरी है जिसमें गटर वाला पानी ही पीते रहो, क्या जे नहीं लगता? सब गलत कार्य चुप करके करते रहो, ना इल्म सीखो ना सिखाओ। दूसरी बात है, थोड़े दिन की होगी उलट पुलट लेकिन सब ठीक हो जाएगा, और बाद में जब साफ पानी मिलेगा तो सबकी दुआएं मिलेंगी ना। यही बात इधर हुई। खैर, रफका को मदीना भेजने के बावजूद रसूलुल्लाह ने अपने मुकाम में दावत को नहीं छोड़ा। इस जुमले को हाईलाइट करें। अच्छे लीडर कभी भी आउट ऑफ ड्यूटी नहीं होते हैं। अपने लोग वहां से हिजरत करके जा रहे हैं लेकिन अल्लाह के नबी ने दावत नहीं छोड़ी। अब कहते छोड़ो, अब मुझे भी तो हिजरत का हुक्म मिल ही जाना है, मैं इनको छोड़ दूं? नहीं, आखिरी दम तक खैर ख्वाही इसला इसने इलाही के मुंतजर रहे। अब कोई मुसलमान भी मक्का में नहीं रहा था सिवाय ऐसे लोगों के जिन्हें कुरैश ने रोक रखा था या इब्तला में डाल रखा था, यानी गुलाम थे, औरतें थीं, कमजोर लोग थे, जिनको रोका गया था बस वही रुके। अलबत्ता रफका खास में अबू बकर और अली रजी अल्लाह अन्हुमा बाकी थे। इन हालात में कुरैश ने अंदाजा कर लिया कि अब जबकि मुसलमानों को एक ठिकाना मिल गया और एक एक करके सब लोग जा चुके हैं, करीब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथ से निकल जाए। अच्छा जाने क्यों नहीं देते थे, चले जाओ, ये भी नहीं अच्छा लगता भाई, आप ना छेड़ो, अपना काम करने तो जो कोई कर रहा है। ये खौफ होता है, याद रखिए, हक का हमेशा लोगों के दिलों में एक खौफ और एक रोब रहेगा। वही खौफ था इनको कि अगर इनकी दावत फैल गई तो हमारे अफकार और हमारे नजरियात नहीं चलेंगे और फिर हमारे दायरे असर से बाहर रहकर कुव्वत पकड़ेंगे और सारा पिछला हिसाब चुक जाएगा। जुल्म भी तो याद थे ना जो किए हुए हैं। ये लोग मक्का के पब्लिक हॉल दारुल नदवा में जमा हुए। ये क्या था, कह लीजिए कुफार की पार्लियामेंट थी, जैसे दारुल अरकम में मुसलमान जमा होते थे ना इल्म के लिए, दीन के लिए, ये कुफर के लिए जमा होते थे दारुल नदवा में। और सोचने लगे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। एक तजवीज़ ये सामने आई कि आपको किसी आहनी कैद खाने में बंद कर दिया जाए, यानी सुलाखों में बंद कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए और दरवाज़ा बंद रखा जाए। इस पर एतराज़ हुआ कि इस शख्स की बात बंद आहनी दरवाजों में से भी निकल जाएगी, ये क्यों खौफ था भाई, और इसके साथ ही जोर पकड़ लेंगे तो इसको निकाल ले जाएंगे। कोई और तदबीर सोचो। एक रुकने मजलिस ने दूसरी तजवीज़ पेश की कि आपको अपने मुआशरे और हदूद असर से बाहर निकाल दिया जाए, इसके बाद हमें इससे क्या मतलब कि आप पर क्या गुजरती है। इस पर फिर एतराज हुआ, क्या तुम इसके हुस्ने गुफ्तार को नहीं जानते, यानी ये कितना अच्छा अखलाक रखता है, बात कितनी अच्छी करता है, इसकी बातों की मिठास से वाकिफ नहीं हो? ये चीजें लोगों के दिलों पर इसके छा जाने का जरिया बनती हैं। ऐसा करोगे तो तुम इससे नहीं बच सकते कि वह अहले अरब में नफूज करे और अपनी दावत और बातों के जोर से इन पर छा जाए। ये भी बात सच थी ना, उनको ये भी नहीं गवारा था कि अल्लाह के नबी की खूबसूरत बातें दूसरों तक पहुंचे। फिर वो इनको लेकर तुम पर धावा बोल दे और इक्तदार की बागडोर तुम्हारे हाथों से छीन ले, और फिर जो सलूक चाहे तुम्हारे साथ रवा रखे। अब अबू जहल की जहानत दूर की कोड़ी लाती है, इसने तजवीज किया। अच्छा, ये पूरी बातें सूरत अनफाल की आयतों में मौजूद हैं, बिल्कुल एंड है सूरत का, उसके करीब आयतें हैं कि जिसमें हिजरत के मौके पर प्लॉटिंग कर रहे थे उसका जिक्र बड़ी डिटेल से, और इसकी डिटेल्स पढ़ना चाहें तो आप तजल्लियात नबूवत से भी पढ़ सकते हैं, रही को मखतूम में से भी या सुन सकते हैं। लेकिन ये वाकई उनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जिसको आज के दौर में आप कहें कि एक सेमिनार मुकर्रर हुआ हुआ है कि जिसका थीम क्या है, इस शख्स को कत्ल कर दो, इसको ख़त्म कर दो। तौहीन रिसालत भी है और कत्ल रिसालत की भी कोशिशें हैं। अबू जहल की क्या तजवीज़ थी जिस पे बाद में सारे उन्होंने इत्तफाक किया? क्या इसने तजवीज़ किया कि हर कबीले से एक एक मजबूत और मुअज़्ज़ज़ नौजवान को लिया जाए और सबको तलवारें दी जाएं, फिर यकबारगी इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करके काम तमाम कर दें। हमें इस तरह से छुट्टी मिल सकती है, इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून तमाम कबाइल पर तकसीम हो जाएगा और बनु अब्द मनाफ इतने सारे कबाइल से बदला लेने की जरूरत ना कर सकेंगे। बस इस पर इत्तफाक राय हो गया और ये साजिशी मीटिंग बर्खास्त हो गई। रिवायत से यहाँ तक पता चलता है कि इस मीटिंग में शैतान भी एक नजदी शेख के रूप में आ गया था, तो उसने ये राय दी थी। किसी ने भी दी हो लेकिन सोच ये थी खराब थी। और आप कुरैश के कबाइल की लिस्ट भी यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो जो इस मौके पे वहाँ मौजूद थे। क्या पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतने लोगों को इकट्ठा करो आपको मारने के लिए कि फिर आखिर आपके बदले की बजाय वो कहेंगे खून बहा दे दो, तो हम सारे मिल के थोड़ा चंदा जमा करेंगे और आपका खून बहा दे देंगे। साजिश तो वैसे बड़ी अक्ल वाली थी दुनियादारी के नाते से देखा जाए। कुरान ने इस पर तबसरा किया है, आयत नंबर 30 में आता है सूरत अनफाल के, और याद करो इस घड़ी को जबकि कुफार तदबीरें कर रहे थे कि आपको कैद में डालें या कत्ल करें या बाहर निकाल दें, और अपनी सी तदबीरें लड़ाते हैं और अल्लाह जवाबन दूसरी तदबीर करता है, और अल्लाह ताला तदबीर करने में सबसे बढ़कर है। यानी ये सारे उनके जुमले बोले हुए बातें अल्फाज अल्लाह ताला ने रख ली ताकि बाद में इनको सुनाई जाए। और इससे ये भी तो पता चलता है ना कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये खुद अपने ही कामों के बदले में या अपनी ही गलत कोशिशों और तदबीरों के वजह से मारे गए, और आप देखिए क्यामत तक जो लोग ये आयतें पढ़ेंगे उनको ये बातें पता चल गई। दारो नदवा के बंद कमरे में ये सब कुछ हुआ। अल्लाह ने दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में उनकी साजिशों को बेनकाब कर दिया। आज भी अल्लाह ऐसा कर सकता है, शर्त यह कि हम मुसलमान डिजर्व करें, हम दिखाएं कि अल्लाह ताला हम ये सब कुछ करने वाले हैं। खैर, उनकी ये कोशिशें थी करते गए। आने वाली पुरस्कार रात सामने मौजूद थी। हजूर दोपहर को अपने महबूब तरीन रफीक हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए, जाकर राजदाना तरीके से इत्तला दी कि हिजरत की इजाजत आ गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपके साथ जाने की दरख्वास्त की जो पहले से कबूल थी। इस सादत के हासिल होने पर खुशी से अबू बकर की आंखें डूब डुबा गईं। ये कोई खुशी का मौका था? कोई फन प्लेक्स पे जा रहे थे? आज का दौर हम के चले उमरे पे जा रहे थे? मौत का सफर था? ये है वो जज्बे जो सच्चे दिल से दीन का काम करने वालों के दिल में उभरते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दे दिया, अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया, अल्लाह ने इस वक्त किसी के दिल में डाल दिया कि मुझे वो दीन की दावत दे रहा है या मुझे दीन के लिए बुला रहा है। तो ये खुशी जब तक दीन नहीं बनेगा, मुसलमानों की हालत नहीं बदलेगी। रोते धोते दीन के काम करने वाले कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं लाते, और अल्लाह को ये डूब डुबाई हुई आंखें ही पसंद आ जाती हैं कि अल्लाह रास्तों को आसान कर देता है। उन्होंने हिजरत के लिए दो ऊंटनियां पहले से खूब अच्छी तरह फरबा यानी मोटी करके रखी थी। क्या पता चला, जिनको काम करना होता है वो पहले से तैयारियां करके रखते हैं। पेशकश की के नबी सल्लम दोनों में से जिसे पसंद फरमाए ये हदिया है, मगर आपने इसरार करके एक ऊंटनी जिसका नाम जुदा था कीमतन ली। यानी अल्लाह के नबी की सुन्नत देख रहे हैं कि कोई मजबूर करता आपको तो फिर आप कहते अच्छा मेरे से पैसे ले लो तो ये चीज आपसे ले लेता हूँ। और चूंकि दीन का मामला था, जाती जिंदगी में और बात होती है, लेकिन दीन के मामले में मैं आपको कहीं कहता है कि आप यहाँ कारपेट डलवा लें तो हम कहते हैं आप ला दें, तो वो कहता है अच्छा ले आएंगे मैं पैसे नहीं दूंगी, तो आप कहते हैं आप पैसे ले रहे बाद में फिर डाल दें। जब कोई काम कहा जाए फिर नहीं मांगनी चाहिए, कोई खुद खुशी से ले आए उसकी मर्जी है, लेकिन आप जब किसी को कोई काम कहते हैं तो फिर आपको उसके लिए पैसे ऑफर करने चाहिए, यहाँ ये मुराद है, क्योंकि आपका सफर दीन का सफर था। रात हुई तो हुक्मे बखुदा, हजूर हुक्मे इलाही अपने मकान पर ना सोए, और दूसरे महबूब तरीन रफीक हजरत अली को अपने बिस्तर पर बिला खौफ सो जाने की हिदायत फरमाई, साथ ही लोगों की अमानतें इनके सपुर्द की, ये किरदार लाए। याद रखिए जब तक उम्मत सादिक और अमीन नहीं बनती दावत नहीं फैलेगी। और मक्का वालों ने जो आपको टाइटल दिया था वो कितना सच्चा था कि हिजरत कर रहे हैं और जिनके वजह से जा रहे हैं उनकी अमानतें लौटा रहे हैं। आज का कोई मुसलमान होता बहुत अकलमंद तो क्या कहता, ले जाओ जो भी देना है, हम भी तो अपना इतना कुछ छोड़ें, आखिर अल्लाह के नबी का भी तो घर बार था ही कुछ। हम फौरन तावीलों में आते हैं, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस तरह से बेनियाज कर दे दुनिया की चीज़ों से जिस तरह अल्लाह के नबी को किया। इस अखलाक की कितनी एक मिसालें तारीख के पास हैं कि एक फरीक तो कत्ल की साजिश कर रहा है और दूसरा फरीक अपने कातिलों को अमानतों की अदायगी करने की फिक्र में, ये भी तो एक अजीब बात है ना। वो अल्लाह के नबी को कत्ल कर रहे हैं और आप इन कातिलों की अमानतें इनको वापस करें, ये किरदार मतलूब है आज के मुसलमान से। फिर हजूर हजरत सिद्दीक के घर पहुंचे, हजरत असमा बिनत अबू बकर ने जल्दी से अपना कमरबंद फाड़ा और एक टुकड़े में खाने की पोटलियां बांधी और दूसरे टुकड़े से मशकीजे का मुंह बांधा। दो मुसाफिराने हक का ये काफिला रात की तारीकी में गामजन हो गया। सिर्फ दो लोग थे इस काफिले में, लेकिन ये दो हजारों पे भारी पड़े। आज दुनिया का सबसे बड़ा मोहसिन और खैर ख्वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी कसूर के बेघर हो रहा था। जरा इस जुमले के दर्द को महसूस करें। हमसे अपने घर नहीं संभलते, हमसे घर छुटते भी कोई नहीं है। तभी तो अल्लाह ने कहा ना कि मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फी सबीलिल्लाहि साकल्तुम मिनल अर्दी और अरदीतुम बिल हयात दुनिया। आप और मैं कभी बैठ के अपना तकाबुल तो करें। देखिए आज कोई हमें कहता कि अपना घर छोड़ के इस्लाम के लिए बाहर निकल जाओ, पैदल सफर करो, 500 मील जाओ दूर, तुम्हारी जान की कीमत है, 3 रातें गार में रहो, वहां सांप और बिच्छू से डसवाओ, चल चल के हफ्तों सफर तय करके वहां जाओ। सिर्फ हमसे ये कहा जाता है अपने घर के कामों को मैनेज कर लो, थोड़ा वक्त दीन को संजीदगी से दे दो। और आप नोट करके देखें, शैतान का अल्लाह बुरा करे, मैं तो यही कहूंगी, 24 घंटे हमारे पास होते हैं। मैं नहीं मानती, मैं भी एक औरत हूं, आप भी औरतें हैं, कि 24 घंटों में से हमको 20 घंटे घरों से चिमटे रहते हैं। हम सोते भी हैं, हम खाते भी हैं, हम शॉपिंग भी करते हैं, हम वक्त ज़ाया भी करते हैं, हम लैयर भी होते हैं, हम काम भी करते हैं, खाने भी पकाते हैं। और जो औरत 24 में से चले 8 घंटे भी निकाल दें सोने के, उसके बाद अगर सारा दिन घर से चिमटी रहे तो उसका घर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए। लेकिन वो 2-3 घंटे सबको चुभते हैं, सारे काम उस वक्त, सारे खाने पकाने उस वक्त, सारे मसले मामले। आप कहते नहीं जॉब करते हैं, तो जॉब किस लिए करते हैं हम, वो भी दुनिया है। हम अपने अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए, हमारे अपॉइंटमेंट्स किस लिए होते हैं। यानी मैं सिर्फ आपको शऊर बेदार करने के लिए कह रही हूँ, आप तो यहाँ बैठे सुन रहे हैं, आपकी तो ये बात ही नहीं है, लेकिन आप सोचिए क्या चीज हमारे पांव पकड़ती है, अल्लाह के दीन के तकाजे निभाने से क्या रोकता है, ये घर रोकते हैं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा मोहसिन और खैर ख्वाह शख्स बगैर किसी कसूर के बेघर हो रहा था। आज वो इन गलियों को अलविदा कह रहा था जिनमें वो चल फिर कर जवान हुआ और जिनमें इसने हक का बोलबाला करने के लिए हजारों ही फेरे किए थे और जिनमें इसने गालियां सुनी थी और ईजाएं सही थी। हम दुनिया के फायदों के लिए या अपने हालात से मजबूर होकर भी बाहर के मुल्कों में आते हैं ना, फिर भी हमें अपना गांव, अपना शहर, अपना मुल्क याद आता है। हमें पता है यहाँ रह के वहां घर बन जाएंगे, वहां रह के हो सकता है वहां भी ना बने, ये हमारा गुमान है, हालांकि झूठ है बहुत बड़ा। लेकिन अल्लाह का नबी क्यों जा रहा है, कभी सोचा आपने? मैंने आपको इतना प्यार था मक्का से कि आप रो पड़े थे उस जगह से गुजरते हुए जहां से एक बार फिर मक्का नजर आने लगा। आपने यूं यू टर्न बनाया था, आप मक्का से मदीना डायरेक्ट जाने के बजाय मक्का से पीछे गए थे जद्दा की तरफ, ताकि मक्का मुझे कोई ढूंढने के लिए आया तो वो तो मदीना ही जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि अब सब जा रहे हैं, इन्होंने भी जाना है। तो आपने एक लंबा चक्कर काटा और गारे सौर पीछे है मक्का से, मदीना आगे। वहां 3 रात रह कर बात ठंडी हो आ गई, फिर घूमे तो वापस वही मोड़ आ गया ना जहां से मक्का दिखता था। तो आप रो पड़े। आपने फरमाया कि मक्का, मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर ये लोग मुझे मजबूर ना करते। हम अपने मुल्क को जो मर्जी नाम दे के कह दें, लेकिन कितनों ने अपने घर, अपनी जगह, अपना सब कुछ दीन के लिए छोड़ा, और एक बार नहीं, बार बार छोड़ा। दुआ करें अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। हमारे कितनों के घर हैं जब बनते हैं तभी हम सोच रहे होते हैं कि ये कितनी को साल रहना है इधर, कब यहाँ से कूच करना पड़ेगा। हम तो पिछले 20-25 साल से एक ही घर में जी रहे हैं, क्योंकि अपना घर है ना, इसको कहाँ छोड़े। दीन नहीं फैलेगा, वल्लाही दीन नहीं फैलेगा। वो वक्त तकलीफ का बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ एक लम्हा होता है, एक सेकंड होता है, जब आप दीन के लिए कहीं निकल रहे हो। देखिए फिर कहूंगी दीन के लिए, और आपका दिल बोझल हो जाए तो आप फिर अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाहुम अशहद, अल्लाहुम अशहद, अल्लाह गवाह है ना। ये सिर्फ वो बंदा जान सकता है जिसने ये चखा हो, जहां दिल लगने लगे बंदा वहां से उठ जाए, जहां घर बनने लगे वहां से फिर आप घर उठाने लग जाएं। ये आम तौर पे नहीं होता, आम लोगों से ये हो भी नहीं सकता। इसके इशारे होते हैं, इसके लिए इंसान पहले से अल्लाह को दिखाता है कि अल्लाह जी मुझे इस काम के लिए चुन ले, वरना ये नहीं होता। आज वो हरम के मरकज़े रूहानी से जुदा हो रहा था, जिसने इसमें बारहा सजदे किए थे, बारहा कौम की फलाह की दुआएं मांगी थी, बारहा कुरान पढ़ा था, और कई बार इस मुकद्दस चार दीवारी, इस वाहद पनागाह, अमनो सलामती में भी मुखालिफीन के हाथों दुख उठाए थे, इनके दिल छीदने वाले बोल सुने थे, यानी वो बात, वो जुमले जिसके बाद दिल में सुराख हो जाए। आज वो इस शहर को आखिरी सलाम कर रहा था, जिसमें इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमा सलाम के कारनामों का रिकॉर्ड मौजूद था, और जिसकी फिजाओं में इनकी दुआओं की लहरें अब तक मुतहर्रिक थीं। कितना मुश्किल है। और उसके बाद आप कभी वहां उस तरह नहीं गए। आगे हम पढ़ेंगे कब क्या होगा, कितनी दफा गए थे। कलेजा कटा होगा, आंखें डुबडुबाई होंगी, जज्बात उमड़े होंगे, मगर खुदा की रजा और जिंदगी का मिशन, चूंकि इस कुर्बानी का भी तालिब हुआ, इसलिए इंसाने कामिल ने ये कुर्बानी भी दे दी। और से सुना है या दोबारा पढ़ो? कलीजा पड़ता होगा, ये चोटें पड़ती हैं तो दीन फैलता है। वो यहीं से पलट जाए जिसे जहां हो प्यारी, वो यहीं से पलट जाए जिसे घर माल दुनिया हो प्यारी। आप इसके 10 जुमले बना के लिख लें, मुझे पता है आप मेरे से अच्छे बोलेंगे। और बहुत सारे पलट जाते हैं वाकई, जिसको ये सब प्यारा होता है, वो कहते हैं पढ़े होंगे, होगा जो देखेंगे, हमारी दुनिया में बुलाती है। और मैं ये सोचती हूँ कि जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं चखा, वो तो भोले हैं, मुझे उन पर रहम आता है। मैं किसी भी पब्लिक प्लेस से या नए लोगों में दर्श करके आऊँ ना, तो मैं दुखी होके आती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मासूम भोले लोग, और यकीन करें आप नॉर्वे वाले लोग खास तौर पे, सीधे सादे लोग, ना होशियारी ना चालाकी, बस जो सब कर रहे हैं उसी भेड़ चाल पे वो चल रहे हैं। लेकिन अमूमी तौर पे लोग बहुत भोले हैं, सीधे भोले, समझ गए ना, होशियारियां चालाकियां नहीं आती, सीधे गांव से उठ के आए हुए लोग, और बुजुर्ग खवातीन, यहाँ ज्यादा बुजुर्ग है। अमेरिका आप जाएंगे ना, आपको यंगस्टर ज्यादा दिखेंगे। यंगस्टर से मुराद ये के जो इस वक्त आपके बच्चों की नस्ल है, बच्चों वाले। लेकिन नॉर्वे में चूंकि ये तीसरी जनरेशन है, तो मैं जब पढ़ाती हूँ तो मुझे फील होता है कि माशाल्लाह क्लासेस में आने वाली ज्यादा बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं। ये फर्क मैं आपको कोई तकाबुल ऐसे नहीं कर रही कि अच्छे बुरे में, यानी बता रही हूँ आपको, क्योंकि हर मुल्क में लोग मुख्तलिफ कॉज के साथ आते हैं। आयरलैंड जाती हूँ, मेरे सामने 80% लोग या डॉक्टर होते हैं या डॉक्टरों की बीवियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ आते ही सिर्फ लोग मेडिकल पढ़ के आते हैं या जॉब के लिए या हाउस जॉब के लिए, वहाँ कोई बूढ़ा आता ही नहीं है। आप लोगों की ईदें यहाँ कैसी होती हैं, खानदानों में जकड़े हुए हैं, कि माशाल्लाह जैसे पाकिस्तान में करते हैं ऐसे ही करते हैं ना, सबने माँ के घर जमा होना है, सारे बच्चे जा रहे हैं एक जगह, लेकिन एक और दूसरे शहरों में मैं देखती हूँ उधर नहीं होता, बाकी जगह में ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं हमारा तो है ही कोई नहीं, वही जो दोस्तों वाले कहानी है ना, तो ये हर शहर का एक दर्द है। अल्लाह के नबी ने उस मक्का में तो एक एक दिन देखा था, आपका बचपन, आपकी जवानी। अच्छा अभी तक तुम ये सोच रहे हैं ना कि आप मक्का से निकले, लेकिन मक्का ने क्या खोया, ये भी पढ़ लें। आज मक्का के पैकर से इसकी रूह निकल गई थी, इसको हाईलाइट करें। एक जुमला बोलती हूँ, तफसीर में तो बोला, वह यहाँ भी बोल देती हूँ, शायद फायदा होगा, कि अंबिया कराम किसी बस्ती में रूह की तरह होते हैं। जैसे जिस्म से रूह निकल जाती है ना, तो जिस्म मुर्दा हो जाता है, इसी तरह जब बस्ती से नबी निकल जाते हैं तो वो बस्तियां मुर्दा हो जाती हैं। मक्का के भी ये बदनसीबी है कि मक्का की रूह निकल गई, आज इस चमन के फूलों से खुशबू उड़ी जा रही थी, आज ये चश्मा सूख रहा था, आज इसके अंदर से बासूल और साहबे किरदार हस्तियों का आखिरी काफला रवाना हो रहा था। एक एक जुमला पढ़ के आपको यकीन आ रहा है? हीरे थे मक्का के जो चंद साल में आपके साथ मिले, और आपको था 100 सवा 100 लोग थे टोटल, 13 साल में 100 कुछ लोग दीने हक के काफले में शामिल हुए। हम कहते हैं ये बताएं कितने 100 लोग क्लास में आते हैं आपके, फिर तो आप कामयाब हैं। कितने आएंगे तो फिर आप कोर्स कराएंगे, नहीं आएंगे तो क्या कराएंगे। हीरे थे ये सारे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलखा और जितने सहाबा के नाम आप जानते हैं, ये हीरों की कानी थी, और अल्लाह ने अपने नबी को दे दी। पीछे वो जो झाड़ झंकार और वो जो फूसी रह गई, उसके आगे जाके होना क्या, ये भी आप पढ़ लेंगे। याद रखिए, क्रीम ऑफ द सोसाइटी वही लोग होते हैं जो कुरान की दावत पे लब्बाई कहते हैं, बाकी तो बेचारे ऐसे ही भूसी की तरह फिरते हैं। दावते हक का पौधा मक्का की सरजमीन से उगा, लेकिन इसके फलों से दामन भरना मक्का वालों के नसीब में ना था। ये सारे जुमले आप खुद लिखिएगा भर में अपने नोट्स में खुद से, फिर आप इनकी मिठास को महसूस करेंगे। सच है ना, पौधा तो मक्का में ही लगा था, लेकिन फल मक्का के नसीब में नहीं था, फल मदीना वालों के हिस्से में आए, सारी दुनिया के हिस्से में आए। मक्का वाले आज धकेल कर पीछे हटाए जा रहे थे, और मदीना वालों के लिए अगली सफ में जगह बनाई जा रही थी, जो अपने आप को ऊंचा समझते थे, इनको पस्ती में धकेलने का फैसला हो गया। ये मला, ये सरदार, ये ऊंची गर्दनों वाले बड़े समझते थे, अल्लाह ने इनको निकाल दिया। और जिनको मुकाबलतन निचले दर्जे पर रखा जाता था, कौन? अब्दुल्ला बिन मसूद, बिलाल, हुबैब, भाई गुलाम, और गंदे और बदबू आती है इनके कपड़ों से, वही लोग उठाकर ऊपर लाए जा रहे थे। ये तकदीरें होती हैं कौमों की। हम तो एक हल्का सा रिएक्शन शो करते हैं ना कोई चीज देख के, हाँ नहीं, आई कैंट, मैं नहीं कर सकती, खत्म। ऊपर पता नहीं अरशों पे क्या मुकालमे होते होंगे इसी तरह हमारे बारे में। फरिश्ते कहेंगे देखो ये कर क्या रहा है, तस्तब्दिलू नल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। कुछ लोगों को तो समझ आ गई है ना आयत, क्या आला को छोड़कर अदना को लेते हो। याद रखिए, अल्लाह के दीन को छोड़कर अगर आप सोने चांदी हीरे मोती भी ले रहे हैं ना, तो वो अदना है। सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, सेहत नहीं है, आफियत नहीं है उसमें। और अल्लाह का नबी क्या कहता है, आपने आखिरी निगाह डालते हुए मक्का से ये खिताब फरमाया, खुदा की कसम तू अल्लाह की सरजमीन में सबसे बेहतर जमीन है, और अल्लाह की निगाह में सबसे बढ़कर महबूब। अगर यहां से मुझे ना निकाला जाता तो मैं कभी ना निकलता। चंद लम्हों बाद गारे सौर में थे आप। ये कितना मुश्किल मौका है, आप इसको महसूस कर पा रहे? तिलावत सुनते हैं जरा इन आयतों की।
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
کتنوں کو سمجھ آ رہی تھی یہ آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نہیں نکلو گے نا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا آپ دیکھیں آج ہم مسلمان واقعی عذاب سے گزر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے بڑی خوبصورت باتیں کر اور سن لیتے ہیں ذرا جا کے تو دیکھیے امت مسلمہ کی زندگی کیسی آج گزر رہی ہے کیا کوئی جاہل جانور ہوگا جو آج جہالت کی زندگی امت مسلمہ کی ہے آپ کے قد سے بڑے بچے ہیں اور ان کو نماز بھی نہیں آتی مرد ایسے کمانے میں مصروف ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کمانا ہے عورتیں ایسے گھی کے پراٹھے پکا پکا کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں شاید اسی سے ان کا مقام بننا اس وقت ہم پستیوں کے طور سے گزرے ہیں اتنے بڑے فتنے ہیں ہمارے ارد گرد اور ہمیں غم کیا لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے جو کبھی دیکھے بھی نہیں نصیب کس کو ہوتے ہیں پیسے دیکھنا ایک اکاؤنٹ سے نکل کر دوسرے میں جاتے ہیں اور وہاں سے تیسرے میں چلے جاتے ہیں کبھی نوٹوں سے کھایا کچھ کہیں اس کو رکھا اپنے اوپر ہمیں اس سیرت سے کیا ملے گا اگر ہم نے اپنے عمل پہ نہ رکھا اور جو بات آپ کو یہاں بیٹھ کے سمجھ آ رہی ہے اس وقت میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں جو یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کو نہیں آتی وہ سمجھ وہ باہر سن بھی لیں گے نا تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں ہم اپنی چھوٹی سی عقل پہ چیزوں کو پرکھتے ہیں اور اگر مجبوری ہیں تو لڑیں حالات سے ہمارا نبی وہ تھا جس نے حالات سے سمجھوتا نہیں سکھایا اس کو بدلا اگر میرے بچے ابھی تک نہیں ٹھیک ہو رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے خود کو پوچھیں اپنے آپ سے ایک ایک جملہ بول کر ہم پوچھیں کہیں وہی بات تو نہیں ہے کہ اگر تم نہیں سنو گے تو پھر کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ آیتیں بھی ہم سن رہے تھے سورۃ توبہ کی آیتیں غزوہ تبوک کے موقع پہ بالکل نہتے ہاتھوں لڑی جانے والی جنگ تھی کیا آج اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے دیکھیے انہوں نے گھر چھوڑے تیریں تلواریں چلائیں گلی گلی پھرے یہ مکی دور پڑھ کے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی بڑے باعزت مقام پہ تھے میرے ذہن میں ایک ہی لفظ آ رہا ہے جب سے یہ میں مکی دور پڑھ رہی ہوں نا یہ آخری رولنا اللہ کا پیارا نبی رولا تھا مکہ کی گلیوں میں پھر اسلام بہلا تھا ہم کہتے نہیں ہماری دنیا نہیں خراب ہونی چاہیے سوری ہم نہیں رول سکتے ٹھنڈا ٹھنڈا بتائیں جس میں چھٹیاں بھی ملیں جس میں آرام بھی ملے اور جس میں سب چلتا رہے تو دین نہیں پھیلے گا کل جب میں وہاں سے فروٹ پک کر رہی تھی نا تو میرے ذہن میں پتہ کیا آیا میں نے دیکھا تو وہ درخت بہت بڑا ہے جو پلمز کا درخت ہے نا وہ جھاڑ والا درخت ہے تو میں سوچی تھی یہ 3-4 سال پہلے لگا ہوگا کیونکہ چھوٹا نہیں ہے وہ پورے بلند شہر سے بھی پرانا ہو جنہوں نے یہ بیج ڈالا تھا ہو سکتا ہے وہ نان مسلم ہی ہو موسٹ پرابیبلی سارے گھر یہاں نروے میں پہلے تو کسی گوروں کا ہی تھے نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس نے یہ بیج ڈالا تھا درخت کا اس کو پتا تھا کہ یہ پھل ٹوٹے گا اور ایک قرآن کے ایک مدرسے میں یہ پھل جائے گا اور قرآن پڑھنے والے لوگ جو آتے ہیں وہ کھائیں گے اس کو تو میرے دل میں اتنی رقت تاری ہوئی میں نے کہا اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لینا کہ ہم چلے جائیں لیکن اس کا پھل کھانے والے ایمان والے ہوں سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين.